साथ उनके कैद में मौजूद है मैदान जंग में बसीरत से हारी इमाम हसन ने इस्लाम पर हमला कर दिया। उनके कौम के नीचे से मुसल्ला खींच लिया, उनके दोस्त से अबा खींच लिया और लोग शाम से अगर नहीं उनके अपने साथ थे जो उनके अपने लश्कर थे। तो मार्फत बसीरत इन दो अहम और दो मार्फत चाहिए लेकिन मार्फत के साथ बसीरत चाहिए। बसीरत के हवाले से एक दुआ है जो हमारे यहाँ ताकीबात की किताबों में आपको मिलेगी, छोटी सी दुआ जो फजर और मगरिब की नमाज में पढ़ने के लिए कहा है, ताकीबात नमाज में। और उस तरह है अल्लाहु मरिनी अस्तलो का बेहद जो मोहम्मद ही हुआ आले मोहम्मद अलैका सल्ले आला मोहम्मद ही हुआ आले मोहम्मद वज अली नूर अभी बसरी जनुबर उनके आल पर जरूर की बात कहा गया कि हमारी आंखों में नूर अता करो वल बसीरत अभी दीनी और हमें दीन की बसीरत अता करो आंखों में बसारत अता फरमा और दिल में बसीरत दीन की बसीरत वल यकीन अपने कल्बी और दिल में कल्ब में यकीन अता फरमा वल इखलास अपनी अमली और अमल में इखलास अता फरमा वो सलामत अपनी नफसी और इस अमल की सलामती अता फरमा वसअत अपने नफसी और इस अमल की वसअत अता फरमा वशुक्र लका अबदल मा और ये कि जब तक मैं जिंदा रहूं तेरा शुक्र अदा करूं। छोटी सी दुआ है जो फजर और मगरिब की नमाज में पढ़ने के लिए रिवायत में ये दुआ आई है और ये भी इमाम का है सारे अलैहि सलाम वो ये कहा गया है कि फजर और मगरिब यानी सुबह शाम दुआ करो सुबह शाम बसीरत में इजाफे के लिए दुआ या सुबह उठते ही जो अहम दुआ है उनमें से यह है कि बसीरत में इजाफा दीन की बसीरत। कुछ बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर बिजनेस की बसीरत होती है, कोई और फिट किसी और फिट का इंसान है उसको अपने शोबे की बसीरत होती है, कोई सियासतदान है उसके अंदर सियासी बसीरत होती है। लेकिन एक बसीरत है जिसको दीन की बसीरत तो मार्फत और बसीरत सही श्रोता के साथ जो लोग थे वो वही थे कि जिनके अंदर बसीरत उन्हें नहीं कर पाते। अमीर उल्मोमिनीन के साथ लोग की बसीरत दी थी उनसे, इमाम हसन के साथ लोग की बसीरत दी, पैगंबर अकरम के साथ लोग बसीरत से आ रही सब नहीं थे इस लोग बसीरत से आ रही नजर आएंगे आप। लेकिन इमाम हुसैन के साथ जो लोग थे क्या बात है, कोई दुनिया की ताकत उनको हिला नहीं सकती। इमाम हुसैन का खास मकाम है, इमाम हुसैन ने हर एक को अपने साथ मिलाया ही नहीं, आपने तो खास लोगों को दावत दी उन्हीं को अपने साथ मिलाया कि जिसके बारे में यकीन था कि आखिर साथ जैसे बाकी कुछ लोग खुद भी आ गए ऐसी जल्दी बसे आ गए और कारवान बढ़ता रहा। लेकिन एक मौका ऐसा आया जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई तो जितने इधर उधर से लोग आए थे वो सब साथ छोड़ के चले, जितने भी बुजुर्ग लोग आ गए थे इस उम्मीद पर आ गए थे कि इमाम हुसैन जा रहे हैं कि तरह उत्तर जाती पूजा कर लेंगे और तो शायद बड़ा खड़ा हो जाएगा और हुकूमत मिल जाएगी और कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो हर तरीके का साथ देते हैं इस उम्मीद पर शायद कुछ हासिल हो गए, ऐसे लोग इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा इमाम हुसैन ने फरमा दिया मैं मुस्लिम की शहादत के बाद लोगों से कह दिया देखो भैया हालात कुफर के हालात इस तरह तुम्हें से जो साथ देना चाहते हो चले वहां पर से, और वहां से लोग मैक्सिमम लोग निकल, सिर्फ मुखलिस लोग रह गए जिनको अंदाजा था कि मुझे की तरफ हम जा रहे तो किन हालात का सामना हो सकता है, और उसके बावजूद वो हुसैन का साथ देने को तैयार। तो हर एक पेमा हुसैन ने साथ नहीं मिला। तो पहला नुकता यह था कि मार्फत और बसीरत के साथ, दूसरा नुकता है शुजात इस्तेकामत के साथ। शुजात तो जरूरी है हुसैन का साथ देने के लिए, बुजदिल लोग का साथ दे नहीं सकते इमाम हुसैन का, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसा इंसान जो खौफ ज्यादा हो किसी भी ताकत से, कुवत से, हुकूमत से, इकदार से, लाओ लश्कर से, मौत से, सबसे अहम खौफ तो मौत का है। जो इंसान को बड़े बड़े सारे मुलाजिम हासिल फाजिल हुकूमतें निज़ाम लोग जो ब्लैकमेल करते हैं, जो इंसान को घर में बैठा देते हैं, वो मौत से डराते हैं, मार देंगे, जान से मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे औलाद को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी नौकरी को नुकसान पहुंचाएंगे, वगैरह। इंसान जाहिर है कि बहुत सारी उसकी वाबस्तगियाँ होती हैं, वो डर जाते हैं, मुख्तरम जाते हैं, कुछ लोग अपनी जान का खौफ महसूस करते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए डरते हैं, कुछ अपने कारोबार के लिए डरते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो बहाना और उज़्र शरई बन जाती हैं। क्या करें, हम तो साथ देने के लिए तैयार थे हुसैन का, लेकिन जो ज्यादा आ गया अपने ज्यादा दाली में, और देखो उसने क्या किया जनाब मुस्लिम के साथ, जिसने हामी उमर वल के साथ क्या किया, वही हमारे साथ भी कर देता वो, तो डराते हैं। आज भी जालिम जावेद फासिम फाजिल निजाम है, ताकतें हैं, कुवतें हैं, ताबूती ताकतें हैं, इस्तेमाली ताकतें हैं, उनका जो तरीकाकार है वही है तरीका वारदात, कि वो अपने मुखालिफिन को डरा के धमका के मौत का खौफ क्या मार देंगे, जंग मुस्तरद कर देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, है ना, किस तरह मिली और एकदम डर जाते हैं। तो डरने वाले भी हर दौर जब शम नाज का खशियत लाभ और अशद का खुशन गरीब कहते हैं कि लोगों से इंसानों से कैसे डरने लगे जैसे खुदा से डरते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। इंसान खौफजदा हो जाता है, इंसान डर जाता है, और लोग खौफ की वजह से भी साथ छोड़ जाते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया वो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले वो थे जो हर तरह के खौफ से बाहर थे। उनकी भी नौकरी थी, उनके भी कारोबार होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनका भी घर होगा, उसको इंतजार का खौफ नहीं था, उनको यजीद का खौफ नहीं था, होगा ना। लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, हुजूर भी लिखे और बुलाए भी, और जब आए तो साथ नहीं दिए, तो उन्होंने कहा था कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत से लीडरों के साथ हुआ है और होता रहता है कि जब उन पर किसी लीडर पर बुरा वक्त आता है तो साथ छोड़ जाते हैं, होता है हर दौर में होता है। हमारी अपनी 8 लाख का मजमूआ अगर सारा बार मुंबई जैसे, लेकिन अब नजर आ रहा है मजमू क्या, तो ये होता है हर दौर में, इस तरह के लोग साथ छोड़ जाते हैं, तो हैरानी की कोई बात नहीं है इसमें। जिन लोगों ने बाबू साहब का साथ नहीं दिया तो आप ऐसा होता है, हैरान उन लोगों पर हों जिनसे उन्होंने साथ दिया, हैरानी के काबिल वो लोग जो इन तमाम नामसाइल हालात के बावजूद साथ छोड़ कर नहीं आए। चश्मे फलक उन पर हैरान है, ये कौन लोग, ये कैसे लोग, ऐसे तो नहीं जमाने के मान उनको सलाम करते अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, ये औलिया अल्लाह वो तो नहीं है जो बैठे हुए खानकाहों में, जो बैठे हुए गारों में, पहाड़ों में, वहां बैठे तस्बीहात में लेकर अल्लाह अल्लाह कर, उनसे अपने जालिम दावे फासिल फाजिल निजाम को, उनके काबूदी ताकत को खतरा ही नहीं, जब खतरा ही नहीं है। कि कोई ताकत का उनके ऊपर मसला तो क्या एकदम डर गए सहम गए। अब वैसे सूरत पर निकल आए, वैसे मुस्लिम दुनिया के हाथ में बैठ कर रहे हैं, लेकिन एकदम शक्ति आई घर पर बैठ के, तो हुसैन के साथ ऐसे लोग दे, हुसैन के साथ देने के लिए शुजात तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ इस्तेखामत चाहिए, इस्तेखामत के साथ। और आपने उत्तर करूं कि मार्फत बसीरत के साथ, शुजात इस्तेखामत के साथ और शहादत शहामत के साथ। ये शहादत फकत शहादत नहीं बल्कि हुसैन के साथ जो लोग शहीद हो रहे हैं आप देखो उनमें बहुत सारे हैं, उनके अंदर शहामत का माने उनमें शुजाती की तरह, यानी शुजाआना तरीके से आगाहाना तरीके से शहीद हो रहे हैं। यदि गलतफहमी से आ गए, गलती से आ गए, अंदाजा नहीं था पहले, नहीं आगाही, और खुद हुसैन अलैहिस्सलाम भी नहीं चाहते कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स आ जाए कि जो बात नहीं है या गलती से आ रही है, या फिर अंदाजा नहीं था पता ही नहीं था। अभी मैंने मिसाल दिया आपके सामने कि जब इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर आई तो लोग हुसैन के साथ छोड़ गए, दो आदमी कूफे की तरफ से आ रहे थे, तो इमाम हुसैन का सलाम ने कहा कि ये इनको बुलाओ, अब इमाम हुसैन के साथी घर जाए तो उनको लेकर आए, उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहा कूफे से आ रहे, कहा कूफे का क्या हाल है, अच्छा उनको अंदाजा हो गया कि हुसैन जदीन है और उनके साथी हैं, और खैर उस जमाने में और इशू हुआ तो कहने लगे कि सबके सामने बयान करें या तन्हाई में बयान करें, हम सर से कहते हैं कि सबके सामने बयान करें या तन्हाई में सुनना चाहते हैं, आपने फरमाया नहीं सबके सामने बयान करें, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बात मेरे साथियों से छुपी रहे, और फिर उन्होंने उनमें से एक ने वो तारीख में जुमला कहा के हवाल अगर आप सुनना चाहते हैं बस यूँ समझ लें कि कुलूबुहुम मअकुम सुयूफुहुम अलैकुम, उनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके खिलाफ हैं, कूफे वालों के दिल आपके साथ है, दिल में आपकी मोहब्बत है लेकिन चूंकि अपने ज्यादा किया तलवारें उन्होंने यहां पर अपने इंतजार कर रहे हैं कोई मुनासिब वक्त आएगा जब निभाते हैं, अभी तो हालात मुनासिब नहीं, हालात साजगार नहीं, और फिर नसीब यह कि तलवार नियाम में रख ली, अगर इतने जात का मजीद प्रेशर बढ़ेगा तलवार उतार तला भी डाल लेंगे, है ना, हम सहने को रोजाशी अपने रुपये में डाल नाम लेके बाद में उन्होंने कहा बोला आपने फला फला आपने फला फला आपने फला फला देखा पूछा उन्होंने खत निकाल लिखा हम देख लिया, तो हुसैन के साथ तो वो देगा जिसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है, बिल्कुल क्लियर वाज है। बच्चे बच्चे को अगर आप देखें जब इमाम हुसैन के साथ कितनी आगाही है, खासी अपने हसन छा के पूछ रहे हैं क्या मेरा नाम दफ्तर शहादत के लिए, और फिर इमाम हुसैन पूछते हैं कि बेटा मौत तुम्हारे नजीर कैसी है, और फिर कासिम कहते हैं शायद से ज्यादा शीन, यहाँ उस बच्चे की आगाही देखी और बच्चे की बसीरत देखी। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में हो और उसे सवाल कर लिया जाए जो इनाम कासिम से किया गया और वो जवाब देते हुए इनाम कासिम से दिया तो एक बहुत बात है, लेकिन मैदान करबला में जहाँ तरफ से महसूर हो चुके हैं, पानी भर हो चुका है, लश्कर पे लश्कर आ रहा है लेकिन वो सब लश्कर दुश्मन का लश्कर है, और वहां पर ये सवाल और फिर जवाब और फिर दूसरे दिन उसको साबित करना जाके हमारी तौर पर मजाक नहीं, कोई हमारी बात नहीं, ये पता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो जाहिर करती है कि सिर्फ जान कुर्बान करना नहीं, आगाही के साथ कुर्बान करना। आज भी बहुत सारे लोग शहीद हो रहे हैं, डॉक्टर क्लिनिक में बैठा हुआ है, किसी ने अभी गोली मारी हो, शहीद हो जाए। शहीद तो वह है, शहीद इसलिए है कि उन्होंने किसी के क्या किया, उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी, किसी से कोई जायदाद तक ना जाता, कोई माली लेन देन का मामला क्या था, कुछ भी नहीं। एक उनके शिया है, किसी भी जान के मार दिए, शिया है तो शहीद तो कहना है कि वो बताए तो जब शिया होने की वजह से मारे जाते। हम तो यह हदीस पढ़ते हैं कि माँ का आला हुक्म आ रही मोहम्मद जी, माँ का शहीद है, पहले बार मोहब्बत में मरा वो शहीद है। पहले बार की मोहब्बत में मरा का माना हम तब यही देते हैं ना कि जिसके दिल में पहले बार की मोहब्बत है और वो तभी मौत मर गया। लेकिन एक शख्स सिर्फ इसलिए मर गया कि उसके दिल में पहले बार की मोहब्बत है, सिर्फ उसको इसलिए मार दिया गया कि उसके दिल में पहले बार की मोहब्बत है, तो वो शहीद हो गए या नहीं। लेकिन वो शहादत के लिए बैठा हुआ नहीं था, बात अहमियत वही है, हम उसकी शहादत पे शक नहीं करते, लेकिन वो शहादत के लिए नहीं बैठा। क्या कोई और है, किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, कोई नौकरी जा रहा था, इतने हो चुके हैं सामने, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, कोई लेने के लिए जा रहा था, और उनमें कोई ऐसा भी है जैसे सिर्फ तो जाकर जिनको थ्रेट भी है, जिनको लोग मशवरे दे रहे हैं कि आप दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, और वो कर भी सकते हैं, जा भी सकते थे, कुछ दिन कॉलेज में ट्रांसफर करवा सकते थे, कुछ प्रिंसिपल से वेट कॉलेज के, लेकिन उनके कारोबार जितने थे मलिर कैंटीन से लिया, कैंटीन भी कॉलेज और शहादत से एक हफ्ते कबल एक मैसेज में यही बात बोली थी, मैसेज के साथ था, तो मैंने देखो लोग ये मैसेज दे रहे हैं, अब मैं लोगों को तरह ने शहादत डिग्री पे दे रहा हूँ, मैं तो दुबई चले जाऊँ, मैं अमेरिका चले जाऊँ, थ्रेट तो है। एक शख्स के इल्म में ये बात है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं इस पे मौत भी आ सकती है, मैं टारगेट भी हो सकता हूं, है ना, इसके बावजूद वो अपना रास्ता तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोग उसे का साथ देते हैं। एक आदमी यूं ही मार दिया गया, पता भी नहीं चलता उसको क्यों मारा गया, बम का धमाका हो गया, शहीद हो गया, जुलूस पे शहीद हो गया, मस्जिद पे शहीद हो गया, वो शहीद होने के लिए नहीं गए, वो तो मस्जिद रिटायर करने के लिए गए, वो भी शहादत है। लेकिन वो लोग जो आगाहाना तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, और उनको थ्रेट भी है, और वो जो शहीद हो रहे हैं उनका दर्जा तो बुलंद है, ऐसे लोग सही दुश्मदा का साथ देने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे लोग, लेकिन अर्ज किया ना कि लोगों के पास बहाने थे, ठीक है आपने हुसैन को हटने का अरमाना भी चाहते थे, लेकिन खूबी की रागबंदी थी, उन्हें हम कैसे जाते, इब्ने ज़ियाद आ गया हम कैसे जाते, हमारा भी घर है, हमारा भी खानदान है, हमारा भी तुम्हारी भी नौकरी है, हमारा भी कारोबार है, इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर यह था कि जो हुसैन का साथ देने के लिए घर से निकलेगा उसको उसके घर के दरवाजे पर सूली दी गई, और इतनी जगह से कहीं भी नहीं, बहुत से लोगों को पसंद करवाया था, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अगर 72 अफराद थे, मैदान में हैरत क्या के पीछे, लेकिन अगर 72 फर्ज कर लें तो 35 इसी कूबे के थे, उसी कूबे वो कैसे पहुंच गए, उनकी नौकरी, उनका कारोबार, उनके बच्चे, उनका घर, सब कुछ था नहीं, लेकिन वो दिमाग चलने तक बेनियाज हो गए, उन्होंने कहा हुसैन का साथ देना है, अब क्या घर और क्या कारोबार और क्या नौकरी और क्या बच्चे, ऐसे लोग हुसैन का साथ देंगे, और ऐसे ही लोग इमाम जमाना के भी साथ देंगे, क्योंकि वहां हुसैन थे, वहां पे जमाना पड़ा गया था। लोग आप जा रहे थे अशुरा पढ़ते, उसमें वहां पे जमाने का तस्करा फिर दिए दो लोग है ना, और आप दुआ दुआ पढ़े उसमें वहां हुसैन का तस्करा है। तो करबला से जरूर का और जरूर से करबला का पढ़ा गया था। तो वही जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के साथियों की इस बात पर पूछ जाते हैं, वही इमाम जमाना के साथियों की इस बात पर पूछ जाते हैं। तो हुसैन के साथ हर एक चीज है, हुसैन के साथ हर एक चल वही चलेगा जिसके अंदर कुछ खास खूबियां होंगी। और मैं अपनी इस गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इस मुनासबत के साथ जो आज और कल के दिन की मुनासबत है, और वह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विरासत बा सआदत। जहां बहुत से लोग जो बज़ाहिर मर्द थे और उन्होंने हुसैन का साथ नहीं दिया, वहां हुसैन का साथ देने वाली और शरीकत हुसैन हर काम में रिश्वदा के हर मिशन में शरीक को जनाब जनाब की किताब को देखें, उनकी शख्सियत को देखें, उनकी कुर्बानी को देखें, उनकी बसीरत को देखें, उनकी मार्फत को देखें, उनकी इबादत को देखें, अंदाजा हो जाएगा किस किस्म के लोग हुसैन के साथ दे सकते। तो हमारे सामने आइडियल कैरेक्टर जो है वो शहजादी ज़ैनब का कैरेक्टर, जिनके एफल इमाम सज्जाद फरमाते हैं, इमाम उनसे जमाने के वो फरमाते हैं, तुम्हें माँ आप तो आलिम है गैर मुअल्लिमा, आलिम है गैर मुअल्लिमा कौन सकते हैं, ऐसा आलिम जिसने किसी से सीखा नहीं, आलिम है गैर मुअल्लिम कौन है, हम दिया है मैं जिनके पास इल्म जो है वो या तो वही के जरिए आए या वो इल्म जो इल्म लदुनी है इल्म वहबी है वो सीना बसीना मुंतकिल हो सही है, या तो वही के जरिए इल्म आया अंबिया अलैहि सलाम के पास या है मैं तारीन के पास वो इल्म जो पैगंबर का इल्म था वो सीना बसीना, तो वो इल्म जो है आई मैं तारीन तक मुंतकिल हुआ। अल्लाह सज्जाद जनाब ज़ैनब के लिए फरमा रहे हैं कि वे अम्मा आप आलिम है गैर मुअल्लिम, बस मैं खत्म करता हूँ इसी दुआ के साथ कि भाई आप हमें दीन मुबीन इस्लाम की सही तालीमात को हासिल करने और इन तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करने की तौफीक अता करें। ये बड़ी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ।
हमेशा के अहल बैत के मानने वाले चाहने वाले बताए के नजर आते थे, साथ देने में कतराते थे कि मौला जी को कहना पड़ गया कि काश उसके दस यहाँ आ जाए तुम सौ वहाँ चले जाओ, तमाम आइमा के साथ ये रहा, आज इमाम जमाना के साथ कुछ ऐसा ही कमोबेश सूरत हाल है कि 1250 साल से वो गैबत कुबरा जो है जारी और सारी जान जान देने वाले मानने वाले दुनिया में 3 करोड़ की तादाद में है, हम ऐसी क्या चीज़ माने हैं कि जिसको अगर किया जाए तो शायद हम भी उसमें 2 कदम आगे चल सकें ये कहने में कि चलो हुसैन के साथ।
ये मैंने अर्ज किया था कि ये जो शरायत है सख्त है, खराब नहीं चल सकता ना, शुरू में मिसाल दी कि मूसा अलैहिस्सलाम हिजर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं चल सके, तो वो नबी है साहब शरीयत है, एक नबी जो है वो दूसरे नबी के साथ नहीं चल सका, हिजर अलैहिस्सलाम के साथ चलो यहाँ से हमारा ग्राफ मुंबई नहीं होगा, इधर यहाँ से हमारा तुम्हारा रास्ते जुदा हो, और मैं पहले ही कह रहा था तुम सफर नहीं कर सकोगे, मैं तो पहले ही कह रहा था तुम सफर नहीं कर सकोगे, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताता हूँ जो कुछ मैंने किया वो क्यों, तो एक नबी दूसरे नबी के साथ नहीं चल पाए, शायद सर आपका साथ देना ये जो है ना सिर्फ पुलिस रात पे चलना। और पुलिस रात के बारे में रवायत है कि बाल से ज्यादा भारी और आग से ज्यादा गर्म और तलवार से ज्यादा धार तेज। वो पुलिस रात कहाँ है? वो कयामत के दिन बनाया जाए? नहीं, वो पुलिस रात इसे दुनिया में है। आपके रास्ते पे चलना, आग पे चलना, आपके रास्ते पे चलना तलवार पे चलना, आपके रास्ते पे चलना बाल से ज्यादा बारीक रास्ते पे चलना मुश्किल है। और फिर इस्तेमामत के साथ चलना, बसीरत के साथ चलना, शुजात के साथ चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कम होते हैं ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे कि सैयदुश्शुहदा ने फरमाया अन्नास अबिदु दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं, लोग दुनियादार हैं। दीन तो उनके जुबान का चटखारा है बस। जहां दीन की बातें करने और दीन पर अमल करने से दुनिया का फायदा हासिल होता है, दुनिया का फायदा होता है ना, अगर हम माशरे में नेक बनकर रहे, अगर हम दीनदार बनकर रहते हैं, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम रोजे रखते हैं, अगर हम हज करते हैं, ज़ियारतें करते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लोग हमें अच्छा समझते हैं, लोग हमें काबिल एतबार समझते हैं, यानी हम अपनी दीनदारी को पेश करवा रहे हैं माशरे में। तो दीन जब तक मईशत के साथ चलता है लोग दीनदार होते हैं, और जहां दीन हमसे सख्ती का मुतालबा करता है दीनदार बहुत कम रहेगा। जब तक दीन चढ़ा रहा है दीनदार, दीन पर अमल करने या दीन की बातें करने में तक मजा आ रहा है दीनदार है, और जहां दीन ने सख्ती कर दी, जहां कड़वी चीज मुंह में आ गई एकदम है ना, मीठी मीठी चीज आती है खा रहे एकदम कड़वी चीज आ गई परम होती है। सर्दी के जमाने में लोग मुंगरिया खाते हैं, खाते खाते एकदम कड़वी मुंगरिया की और नहीं छूटते, तो लोग तो चाहते हैं बस मीठी मीठी चीजें मिलती है, दीन के नाम पे मीठी मीठी चीजें मिलती है। और ये बताओ जा रहा है कह दिया ऐसा होगा कि आज पाएगा जरूर और नाम लो वन तक में शहीन तक खौफ पर जरूर बस जरूर आजमाएगा। आजमाइश का वक्त आता है लोग कर बैठे,
ये तो मजबूरी बीमारी हो गई, अगर हम इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आए तो जो मैं अपने तौर पर समझाऊंगा आप तसी कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं हूँ, आज मैं इससे मुसर हूँ, मैं आपसे उसकी तसी चाहूंगा। मैंने जो इससे नतीजा किया इमाम हुसैन के खुतबे से, जब इमाम ने उनको सब कुछ बता दिया था रोजे आशूर और जब उन पर कोई असर नहीं हुआ, एक जुमला इमाम हुसैन ने कहा था शायद वो हमारे लिए मिशाल रहा है और ये इस मसले को हल करता है कि हम मासूम का हक का साथ क्यों नहीं देते। इमाम ने कहा था कि मुझे मालूम है तुम्हारे पेट हराम चीज़ों से भरे, मेरी बात का तुम पैसा नहीं होगा, तो ये क्या ऐसी बात है कि अगर पेट का हराम चीज होगी तो मासूम का असर नहीं
होगा? ये दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ये एक फैक्टर ये भी है, और वो इस ये फैक्टर नहीं बना के मुकाबले पे आ गए। ये तो असल में उस तनाजु में है कि जब मेरे धर्म ने पूछा कि भाई आपकी नसीहतों का इन पर असर क्यों नहीं हो रहा है, आप इमाम वक्त हैं, मासूम हैं, आप नसीहत कर रहे हैं और आपकी नसीहत का असर नहीं हो रहा है। उसने नहीं जा रहे थे, वो तो अपने हथियार बजा रहे थे, वो तो सीढ़ियाँ बजा रहे थे, वो तो गालियाँ पीट रहे थे, जवाब आए थे, और जो सुन रहे थे उनका बेसर नहीं हो रहा था, तो असर क्यों नहीं हो रहा है? इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया कि इनके पेट पे हराम भरा हुआ है, अगर इन किसी के पेट पे हराम भरा हुआ हो तो उस पर नसीहतों का असर नहीं होगा, अच्छी बातों का असर नहीं होगा। ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, मगर वो चीजें जो उनको वहां से लेकर यहाँ तक मैदान करबला में लेकर आई वो बहुत सारी चीजें। उमर इब्ने साद क्यों आया था? रहती उमर के चक्कर में इन उमर इब्ने साद के अंदर एक आलू मारी और वो ये थी कि कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए। अच्छा बड़ी पोस्ट की ख्वाहिश होना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बात की, हम सब बड़ी पोस्ट की ख्वाहिश करते हैं। देखिए बड़ी पोस्ट की ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी पोस्ट मिल जाए हराम से हो या हराम से हो, जायज रास्ते से हो नाजायज रास्ते से हो, इस बड़ी पोस्ट को हासिल करने के लिए हुसैन इब्न अली को कत्ल करना पड़े तो हम तैयार हैं, इनको बड़े से बड़ा जुर्म करना पड़े, बड़े से बड़ा जुर्म करना पड़े फिर भी हम बड़ी पोस्ट पे बैठने को तैयार हैं। अगर ये अप्रोच है, ये हमारे अपने साथ वाली अप्रोच है, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स है।
सवाल ये था रवि के मेरे जहन में एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो रहा है आपकी एक बात से, कि आपने कहा कि एक नबी दूसरे नबी का साथ नहीं दे सका, जबकि दोनों हक पर थे, यानी हजरत मूसा अपनी जगह हक पर थे, हजरत खिजर अपनी जगह हक पर थे, तो क्या इमाम हुसैन का मामला इस तरह से लेंगे कि इमाम हुसैन के साथ कोई नहीं हो लेकिन वो हक पर?
नहीं, बात यह नहीं हो रही, बात यह है ना कि आप मामला होते हैं, वो जो साथ नहीं दे सके वो इसलिए कि वो इल्म जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हासिल था वो उसकी ताबीर को नहीं समझ सके, कि वो मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पाए नहीं थे कि उसके लिए लफ्ज ताबीर आया, एक है तफसीर एक है ताबीर। तफसीर तो जाहिर अल्फाज माना के साथ होती है, लेकिन ताबीर वो होती है कि जिसमें वो माना निकाल के लाया जाता है जो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं होता है, ताबीर का मतलब ये होता है। तो वो उस मकाम पर फायज नहीं थे मसाले से, ठीक है, उनके हक पर होने या नहीं होने की बात नहीं हो रही, साथ नहीं ले सकते। अच्छा, आप ये भी एक बात है, लेकिन मसलन 61 हिजरी में जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम का साथ नहीं किया पूरे आलम इस्लाम में, क्या वो सब लोग जन्नत में चले रहे हैं? ऐसा भी नहीं, ये तो उससे दावत आलम पूछेगा ना तुमने साथ क्यों नहीं दिया, ये देखा जाएगा उसके पास उनके पास क्या जवाब है। ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो वाकई मजबूर, इतने लोग थे जो कूफे से निकले इमाम हुसैन का साथ देने के लिए, और जब उन्होंने देखा कि नाकाबंदी है और ये ऐलान हो गया कि हर शख्स जो असलाह उठा सकता है वो करबला में पहुंचे और यजीद के लश्कर को ज्वाइन करें, तो उन्होंने अपने आप को सहरा में भटका दिया, सहराओं में चले गए कि यजीद के लश्कर में शामिल ना होना पड़े। तो मुख्तलिफ लोग हैं।
इसमें सवाल ये है कि जैसे आपने जो बताया कि शिमर ने जो जवाब दिया था मीर की जब बता दी, अब ये बताइए कि बहुत सारी ये इधार है, क्योंकि माविया के ज़माने के अंदर ये फैक्ट्री लगाई गई थी, इस पसंद जाली हदीसों बनाई गई थी कि जो अमीर है चाहे वो जैसा भी उसकी अदात करनी है इमामत के खिलाफ। देखिए सवाल ये कि हमें आज भी इस पसंद के लोग मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के, हमारे मुल्क के अंदर भी इस पसंद के नजरियात से हामिल मुसलमान हैं जो समझते हैं कि नहीं हम हुक्मरान के खिलाफ नहीं लड़ सकते। क्यों लड़ सकते? क्योंकि जो है भारत मुसलमान है और हमें जो है मुस्लिम मुल्क है और हमें उसकी अदात करनी है। सवाल ये कि एक शख्स इस अकीदे के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है ना, तो रोज़े क़यामत उसका क्या मकाम होगा? क्योंकि उसने तो जो उसको रिवायत मिली, जो हदीसें मिली, जो उसको दीन मिला, उसमें यह था कि अमीर की दात करनी है, कोई इसमें मर जाता है, रोज़े क़यामत काम खड़ा होगा।
असल में देखें रोज़े क़यामत किसके साथ क्या होगा इसका कोई फैसला हम दुनिया में नहीं कर सकते, ये तो उसका खुदा का मामला है हर शख्स का। फिर वो तुम्हें बताएगा तुम क्या कर रहे थे। तो जब उसके सामने हम जाएंगे तो उसके सामने अपनी जस्टिफिकेशन पेश करेंगे, अगर हमारी जस्टिफिकेशन कबूल हो गई ठीक है, बच गए। तो वो मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो जब दुनिया में जब इन चीजों को देखते हैं तो हम असल में हक की शनाख्त की कोशिश करते हैं कि सही चीज क्या है, सही रास्ता क्या है, और वो शराब भी हम अपनी जो इंसानी सलाहियत ताकत कुव्वत इस्तेआत है उसी से कर सकते हैं। तो हमसे तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि तुमने क्या समझा, और जो कुछ तुमने समझ लिया उसके मुताबिक जो तुम्हारा वजीफा था जिम्मेदारी थी उस पर अमल किया या नहीं किया। बाबा ने नाम कहानी कि माँ मुकल्लब पे वजीफा है न मुकल्लब पे नतीजा, कि हम अपने वजीफे के अपने जो जिम्मेदारी है सिर्फ उसके जिम्मेदार, नतीजे के जिम्मेदार नहीं। तो आखिरत में क्या होगा ये तो उसके लिए किसी के बारे में भी कहना, हम तो दुनिया के बारे में बात करेंगे, और दुनिया भी ये है कि हम कोशिश ये करें कि जो सच और हक है वहां तक पहुंचे, और जब हक वाजे हो जाए तो उसको कबूल करें और फिर उस रास्ते में चलना शुरू कर दें। उस वक्त फिर हरदर्मी گزارا نہ کریں, اس پر بہانے بازی نہ کریں, یہ اثر ہے میرے بارے.
موہب کا شیعہ کا فرق آپ نے جو رکھا ہے, موہب محبت کرنے والا, شیعہ جو رکھتے ہیں چلنے والا. موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ موہب بنانا بہت آسان ہے, یعنی ہم بھی طور پہ کچھ بھی نہ کریں اور محمد عالم بس کی محبت دل میں رکھیں, گھر پہ بیٹھے رہیں اور جو رسمی دن ساری چیزیں کرتے ہیں شیعہ کے لیے, پھر ہم راہی رستے پہ چلنا قدم قدم. تو ابھی ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ویسے شیعہ کے فرض کریں کہ نہیں بھی کوئی موجود ہو اور وہ آپ کے اس لیکچر کے ذریعے وہ آج سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں رستہ کیا کرنا چاہوں, تو عملی طور پہ وہ کہاں کس طرف پہنچا کرے, تو وہی سمجھے بابا کروائے اپنے کو کہاں رستے پہ چلنا, تو مختلف تنظیمیں ہیں مختلف حالات ہیں, تو اس کے لیے اس کو شروع ہونے باہر بھی جو آپس میں جو کمپٹیشن ہے ڈیفینسز ہیں یہ کچھ کرتا ہے وہ کہاں آپ کے لیے گیم بجوا کے ہاتھ میں اس رستے پہ چلنا ہوں.
جی بہت اچھا سوال آپ نے دیکھے, کچھ عملی بات ہونی چاہیے. تو ہمیشہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے, ٹھیک ہے, نیچے سے اوپر تک جانا بہت مشکل. ہمیں ربو نے فرمایا کہ اگر تم نے حق کو سمجھ لیا تو پہلے حق کو پہچان لیا جائے گی, تو حق کے شناخت میں چاہیے. پھر مولا علی کے زمانے میں جب جنگیں ہوئی تو لوگ کنفیوز تھے, پتا نہیں حق اس طرف ہے یا اس طرف, ادھر بھی مقدس لوگ ادھر بھی مقدس لوگ, ادھر بھی نماز ہوئی ادھر بھی نماز ہوئی, ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کی لگتی تھی, کنفیوز بہت سے لوگ. اگر اوپر سے آتے ہیں نا تو آسان ہو, آج بھی کنفیوز ہے والے صاحب کی بات نہیں, اگر اوپر سے آتے اور پیغمبر کے قول یاد کر لیتے کہ الحق و مع علی راستہ اب ہم ایک ایسے دور میں جب زمانے غیبت ہے, ایک دعا ہے رمضان میں پڑھنے والی دعا ہے کتاب, اس کے آخر میں کہتا ہے اللہم انا نشکو الیک و الیک تشکو, کیا شکایت کرتے ہیں, فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و شدت الفتن. کیا ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جب نبی ہمارے ساتھ درمیان نہیں ہے, امام ہمارے غیبت میں ہیں, فتنے ہر طرف کثرت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, دشمن ہمارے زیادہ ہیں, دوست ہمارے کم ہیں, تو مشکل زمانے ہیں نا, کم زمانے ہیں. ایسے زمانے میں زیادہ مشکل ہے, اور ایسے زمانے میں اس کے ساتھ ایک بات کی بتا دوں تو ظاہر کی ڈسایڈوانٹیج ہے نا ہمارا ایسے زمانے میں, لیکن ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایسے زمانے میں جو حق پر قائم رہے ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے, ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اچھا تو اب کیا کریں ایسے میں, ایسے میں دیکھیں کہ اصل میں وہ کون سا راستہ ہے جو وہاں سے آ رہا ہے جو ہمیں اس سے متصل کر رہا ہے, یعنی ہم اگر ولایت سے متمسک کرنے والوں میں سے ہیں تو ہم پھر نظام ولایت سے متمسک ہوں گے نا, کسی اور نظام سے کوئی متمسک ہوں گے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں ان تمام سب نامساعد حالات کے باوجود ولایت کا نظام کون سا ہے, اور ہمارا تمسک یعنی ہماری وابستگی اس ولایت کے نظام کے ساتھ ہے یا نہیں. اگر ولایت کے نظام کے ساتھ ہے تو آسانی آج فرض کریں وہاں پہ شفٹ ہے, تو کیا ہمارے اندر اتنی امام زمانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی داخلے نہیں دیے. لیکن اگر ہم ایک نظام ولایت سے متمسک رہیں گے تو پھر خود بخود ہم اس نظام سے وابستہ ہو جائیں گے, اس اسی لیے جو ٹارگیٹ نا کہ امام جماعت تشریف لائیں 313 313 کے ساتھ تو پوری دنیا پہ انقلاب نہیں آ سکتا, لیکن وہ 313 وہ ہوں گے جو سب سے پہلے امام کی نسبت میں حاضری دیں گے, اور 313 وہ ہوں گے جن کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہوں گے. فرض کریں فار ایگزامپل آج کام کا ضرور ہوتا ہے اور 313 میں سے ایک سید حسن نصر اللہ ہے. اب حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے, حسن نصر اللہ اگر امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص چلا گیا, وہ ایک نہیں, اس کے پیچھے پوری فوج ہے. اچھا اب وہ فوج جو اس زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان سے وابستہ ہے اور ان کے خاطر میدان عمل میں ہے, اپنی جان کو برباد کر رہی ہے, اپنی اولاد کو برباد کر رہی ہے, اپنے مال کو برباد کر رہی ہے, اور قربانی وہ دیتے ہیں, جہاد وہ کرتے ہیں, شہادتیں وہ پیش کرتے ہیں, جوانوں کو اپنے قربان وہ کرتے ہیں, اور انفراسٹرکچر اپنا تباہ کرواتے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں, اور ان کی کامیابی کا جشن جو ہے وہ ہم اس گراؤنڈ میں مناتے ہیں. چلیے تو ہم تو فقط جشن منا رہے ہیں, اپنی قربانی تو انہوں نے دی, جوان انہوں نے پیش کیے, جس کی وجہ سے ان کو جشن منانے کا حق ہے اور ان کی وجہ سے ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو اب جو لوگ نظر میں وابستہ ہوں گے نا وہ خود بخود اپنے زمانے سے متاثر ہو جائیں گے. جو انقلابی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پھر انڈیویجولی شناخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ دیکھیں گے ہاں ٹھیک ہے وقت ہے, ویسے لوگوں سے منسلک ہیں جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو زمانۂ غیبت میں وہ کام انجام دے رہے ہیں, امام زمانہ چاہتے ہیں رام تشریف لائیں گے خود وہ شامل ہو جائیں گے اس کاروان میں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی میں تلاش کر رہے ہوں گے کہ اس سال امام کی آنے کی پیشن گوئی تھی بھی یا نہیں تھی, اور جنتریوں کے پیشن گوئی وہ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ وہ ہے جو میدان عمل میں شامل ہے.
آخر میں اس نے بولا تھا کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے اور جو ہے ہم ان کی طرف سے لڑیں گے, یہ بات ان کی سب نے دیکھی ہوگی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو وہیں تو اس سے کیا ریئیکشن ہوگا, خیبر کے یہودیوں والا ریئیکشن تو نہیں ہوگا.
نہیں یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں, بتا دوں میں آپ کو ہمارا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, لیکن میں بھی آپ حرام ہو رہے ہوں سن کر کہ جو داعش ہیں طالبان ہیں ان سب کے جھنڈے سیاہ ہیں نا, سیاہ جھنڈے کیوں ہیں ان کے, اس لیے کہ وہ حدیث ہے پیغمبر کی جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو خراسان سے سیاہ لشکر والا ایک سیاہ جھنڈوں والا ایک لشکر نکلے گا اور وہ امام مہدی کا ساتھ دے گا. یہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم وہی لشکر ہیں, اس لیے ان کا جھنڈا جو ہے وہ سیاہ ہے اور ان کے نام کے ساتھ خراسانی بھی لگ جاتا ہے, جیسے خالد خراسانی اسپوکس مین جو طالبان کا ہے اس کا نام خالد خراسانی, جبکہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خالد بلتستانی, لیکن بہرحال اس نے خراسانی اپنے ساتھ اس لیے لگایا ہے کہ اصل میں لشکر خراسان سے اپنے آپ کو منسوخ کرتا ہے, اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی طرف سے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خراسان سے ادار خراسان بزرگ ہے جو قدیم خراسان قدیم جس کے اندر افغانستان کا یہ پورا علاقہ جو ہے یہ شامل تھا, سینٹرل ایشیا کے بہت سارے علاقے شامل تھے, تو یہ سب علاقے جو ہے خراسان کہلاتے تھے. آج طالبان کا مرکز جو افغانستان ہے اور جو چیچنیا وغیرہ کے اندر جو لوگ دہشت گردی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خراسانی سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو امام مہدی کا لشکر کا سپاہی سمجھتے ہیں, اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس لشکر کے سپاہی ہیں اور یہی کہہ کر ان کو کنوینس بھی کیا جاتا ہے، اس پر کتابیں بھی ہیں، اس پر ریویو بھی ہے، آڈیو بھی ہے. اچھا اب ہم سمجھتے ہیں کیا ہمیں وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح. اب اصل بات تو دیکھیں جب امام تشریف لائیں گے نا پھر پتہ چلے گا. یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا. دیکھیں پیغمبر اکرم کی آمد کی پیشن گوئی سب سے زیادہ یہودی کیا کرتے تھے. یہودی مدینے میں آ کر آبادی اس لیے ہوئی، فلسطین سے چل کے مدینہ آئے. مدینے میں یہودی کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے. کیوں آئے تھے؟ بزنس کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے بھی کوئی اٹریکشن نہیں تھا. صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس سرزمین میں وہ نبی آئے گا پہلے ان کی سرزمین. لہٰذا وہ آخری نبی کی تلاش میں مدینے میں آ کے آباد ہو گئے اور پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے اور وصیتیں کر کر کے مرتے تھے، ان کے علماء بھی ان کے بزرگ بھی. لیکن جب پیغمبر سامنے آئے تو سب سے زیادہ مخاطب کس نے کی؟ جو اتنی پیشن گوئیاں کر رہے تھے، جو انتظار کر رہے تھے، وہ بٹر رہنے میں ثابت ہوئے. اور جو فارس کے ایران کے آتش کدے میں جو لکڑیاں جھونکنے والا سلمان، جو کبھی یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے، کبھی عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گئے، کبھی غلام بنا کے بھیج دیے گئے، اور مختلف گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے کے بعد پھر آخر آخری عمر میں بڑھاپے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اتنے مخلص ہوئے، اتنے مخلص ہوئے کہ میں عمر فرمایا سلمان منا علی، سلمان ہمارے تو وہ آتش پرست سلمان کو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اس آخری نبی کا جانصار بنے گا، اور وہ جو یہودی اتنی وصیتیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں نا، یہ جنگ خیبر میں اس کے مقابلے پہ آ جائیں گے. کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی فکر کرنی چاہیے. کسی پہ ختم کرتے جو ہے سلام کی محمد زمانہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوات الله عليه وعلى آله. Thank you.